दिनांक 12/7/2016 को पार्ला मुंबई में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के नियमसार प्रवचन नंबर 150 पर पंडित श्री अभय कुमार जी शास्त्री देवलाली द्वारा समीक्षा सुनिए।
जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अर्हंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयुर्यालम, नमो वज्रायालम, नमो लोए सवसाहूलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। त्वयि सति परमात्मन् माद्रशान् मोहमुग्धान्, कथम तनु वशत्वान् बुद्ध केशान् यजेहम्। सुगत मगधरम वा वागधीशम शिवम वा, जित भवमभिवंदे भासुरम श्रीजिनम वा। लमियोण जिनम वीरम अनंतवर्णान दंसन सहावम, वोच्छामि नियम सारम केवली सुद केवली भणिदम।
श्री नियमसार परमागम शास्त्र यहां विराजमान है। यहां धारावाही रूप से प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव श्री की मंगलवाणी आधुनिक पद्धति से सीडी के माध्यम से अपन सब इसी शास्त्र पर उनका मंगल प्रवचन सुन रहे हैं। मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष और रोमांच होता है कि ऐसे मुमुक्षुओं के बीच में, जिनके हृदय में पूज्य गुरुदेव श्री बहुत गहराई से बैठे हुए हैं, उनके बीच में भी स्वाध्याय के माध्यम से कुछ गुरुदेव श्री की वाणी के रहस्यों पर चर्चा करने का, इस अष्टानिका पर्व के निमित्त से ये अवसर मिला, इसकी बहुत प्रसन्नता है। और मैं यथाशक्ति इस प्रसंग का पूरा पूरा लाभ लेना चाहूंगा। गुरुदेव श्री के जीवन से तो आप सब परिचित हैं, हिंदी भाषी समाज में उतना परिचय नहीं है। कल जैसे देवलाली में अपने हेमंत भाई थे, उन्होंने करीब 20-25 मिनट गुरुदेव श्री के बचपन से लेकर के और परिवर्तन तक की पूरी घटना क्रम बार, कब क्या हुआ कब क्या हुआ, ये सब उन्होंने सुनाई, लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। तो जीवन परिचय से आप लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन गुरुदेव के चिंतन में जो गहरे बिंदु आते हैं उनके बारे में तो जितना भी विचार किया जाए, जितना भी कहा जाए, उतना ही कम है, उसका कोई अंत नहीं है। 9000 घंटों के प्रवचन हमारे बीच में मौजूद हैं, तो एक एक प्रवचन पर अगर पूरे प्रवचन की समीक्षा की जाए तो समझ लीजिए 3 घंटे एक प्रवचन में आराम से निकल सकते, तो 27000 घंटों की समीक्षा हो सकती। उतना तो समय भी अपने पास नहीं है, इसलिए एक पद्धति हमारे अनंत भाई की प्रेरणा से और उनकी भावना को आदर देते हुए एक पद्धति डेवलप की है, गुरुवाणी मंथन शिविर का आयोजन किया जाए। इसका अर्थ ये है कि जो प्रवचन गुरुदेव श्री का चलता है, उस प्रवचन के आधार से ही न केवल उस विषय को रिपीट करना, बल्कि उसमें जो खास बात गुरुदेव श्री ने किस स्टाइल में किस चीज का क्या अर्थ किया है उसको स्पष्ट करना, हाईलाइट करना और जरूरत हो तो उसकी व्याख्या करना, ये गुरुवाणी मंथन शिविर का स्वरूप है। देवलाली में तो ये आदत ही बन गई है और हम लोगों की तो ऐसी आदत ही हो गई है कि अगर गुरुदेव श्री के सीडी के बाद में हम स्वाध्याय के लिए बैठते हैं तो वहां तो यहां तो हम पूरा समय लेंगे उसमें, लेकिन 15-20 मिनट उस एक घंटे के प्रवचन पर चर्चा जरूर करते। मैं भी करता हूं, हमारे हेमचंद जी भी करते हैं और जब मैं सुबह नहीं कर पाता हूं, सुबह हेमचंद जी का होता है, तो कोई विशेष बात अगर ख्याल में रह गई और वो बहुत कहने लायक रही तो शाम के स्वाध्याय में उसे रिपीट करते हैं कि आज गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा था। तो यहां तो खुला अवसर है पूरा पौन घंटा इस विषय पर चर्चा करने का, और हम ये चाहते हैं कि ये परंपरा धीरे धीरे फैले, सारे भारत में ये पद्धति विकसित होवे। उसी भावना के फलस्वरूप सोनगढ़ में अलग अलग ग्रुप के लोगों को बुला के और गुरुवाणी मंथन शिविर यानी गुरुदेव की वाणी का मंथन करना, उसका आयोजन पिछले बार भी हुआ, इस बार भी 23 तारीख से होने वाला है। खैर, ये तो एक जानकारी मैंने आपको दी। गुरुदेव श्री के प्रवचन शैली के बारे में तो हम सब परिचित हैं, क्या कहना, जो विषय चलता है उस विषय का पूरा आनंद लेना, वैराग्य का प्रकरण हो, भक्ति का प्रकरण हो, दृष्टि प्रधान प्रकरण हो, ज्ञान प्रधान प्रकरण हो, जो भी विषय चलता है गुरुदेव उसके ऊपर पूरा न्याय देते हैं। इसलिए मैं गुरुदेव श्री के लिए अत्यंत बहुमान पूर्वक कहता हूं कि वे इस शताब्दी के सबसे ईमानदार वक्ता हैं। ईमानदार वक्ता का अर्थ ये है कि विषय को लेकर कभी खेंच नहीं चलती। अगर ज्ञान प्रधान पर्याय की बात, जैसे आज लास्ट में उन्होंने कहा कि विकृति हो, विकृति थाय छे, पर्याय में विकृति होती है परंतु उसमें पर वस्तु नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि मैंने माना कि ये मकान मेरा है तो ये मान्यता तो मेरी पर्याय में खड़ी हो गई, परंतु मेरे मानने से कोई मकान मेरी पर्याय में आ गया हो या मेरा हो गया हो ऐसा तो सपने में भी नहीं होता। उन्होंने कहा था जोर देकर के, बाहर में तो न थाय पर सपना में पण न थाय। तो इस तरह से अब पर्याय की विकृति को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? वो तो दृष्टि प्रधान वाले समझ लो महापुरुष हैं, वो पर्याय की बात को क्यों बात कर रहे हैं? उसमें आई ना, इसलिए उन्होंने उसको भी न्याय दिया। एक चक्रवर्ती के यहां जब कोई प्रसंग बनता है, कोई बड़ा प्रसंग, जैसे वह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, उनके तो 60,000 होते हैं, किस किस का बर्थडे अच्छा मनाते होंगे, लेकिन उन्हें क्या कमी है, हर एक का मनाते होंगे। तो जब पुत्र रत्न हुआ तो वो एक बड़ा समझ लो समारोह करते खुशी का, और उसमें एक किमिच्छित दान की घोषणा करते। किमिच्छित दान का मतलब ये होता है कि जो याचक जो चाहे उसको वो देना, पूछना नहीं कि कितना चाहिए क्या करोगे इतने का, संभाल पाओगे कि नहीं, कोई क्वेश्चन बट परंतु नहीं। जो याचक जो चाहे उसको वो देना। पूज्य गुरुदेव श्री को पूज्य बहन श्री के शब्दों में कहा जाए तो श्रुत की अपूर्व लब्धि है। तो जो सभा में जैसी रुचि वाले योग्यता ये श्रोता बैठे हों, जैसी रुचि वाले मतलब नए श्रोता हुए तो उनके लिए नारियल के गोले का उदाहरण, नारियल का उदाहरण, लेनी पीपर का उदाहरण, पुराने अभ्यासी श्रोता हुए तो पर्याय का सटकारक स्वतंत्र है, जुदा है, द्रव्य से भी पर्याय पैदा नहीं होती है, ऐसी ऐसी अति सूक्ष्म बातें। भक्ति प्रधान प्रकरण हो जैसा कि देव की परिभाषा में आया, आपने ध्यान दिया होगा, एक तरफ तो ये कहते हैं कि पर से नहीं मिलता है, सुख पर में से नहीं आता है, मुक्ति भी भगवान नहीं दे देते हैं, छता उनको देव कहते हैं। तो देव की व्युत्पत्ति गुरुदेव ने संस्कृत में बताई, ददाति इति देव, जो देव है उसका नाम देव। समझ में आया? ये तो एक व्याकरण की परिभाषा है। आगम में तो जो देव गति नाम कर्म के उदय वाले जीव होते हैं उनको देव कहते हैं। अब देता तो कोई किसी को कुछ नहीं है, तो भी ददाति इति देव कह के गुरुदेव ने दोनों पक्षों के दो विरोधी कथनों का समन्वय किया। कि व्यवहार में ऐसा कहा था, हे भगवान मुझे बोधि समाधि दो, बताया था ना समय लोगस्य का, मुझे समाधि प्रदान करो, मुझे बोधि प्रदान करो, ऐसा कह के उनका देवत्व स्वीकार करते हैं और कोई किसी को कुछ नहीं देता है ऐसा कह के उनका, समझ लीजिए जो वस्तु स्वरूप है वो स्वीकार करते। तो हर जरूरत की चीजें, जैसे दवा की एक गोली में सब विटामिन रख दिए जाते हैं, वैसे एक घंटे के व्याख्यान में भेद ज्ञान की प्रेरणा, भेद ज्ञान का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, भक्ति की प्रेरणा, जो एक एक पंक्ति पंक्ति पढ़कर, जैसे कामधेनु गाय का दोहन किया जाता है, गाय को दोहा जाता है, कभी कभी वो कहते हैं ना आव में से वो दोहते हैं, तो उस तरह से वैसे जिनवाणी ये गगन मंगल मंडल में गौआ बयानी, तो ऐसी गाय जिनवाणी को कामधेनु कहा, और वो जिनवाणी का दोहन करने वाले कुशल, समझ लो ग्वाले, इस रूप में गुरुदेव श्री का व्याख्यान हमारे सामने होता है। अपन विषय की भी चर्चा करेंगे प्रवचन के माध्यम से ही, और जो मुख्य बिंदु हैं उनकी भी समीक्षा करेंगे। एक बहुत सुंदर प्रकरण आया था प्रारंभ में ही, अभी आज तो मैंने इसमें नोट किया, कल से मैं स्टाइल चेंज करूंगा, वो देवलाली वाली स्टाइल रखूंगा मैं, जो कारण कार्य नियम पुस्तक है उसमें ही पॉइंट लगा लेता हूं, तो वो पॉइंट को फिर मैं पेज के रेफरेंस से बोलता हूं, तो यहां भी आपको वो दिखा सकेंगे। देवलाली में वो स्टाइल, आज मुझे ध्यान नहीं रहा इसलिए आज मैंने नोट किया, अभी तो ये इस पे आने लगा ना, सब तो बुक नहीं रखते हैं तो नोट करने की आदत हो गई। भव 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 नाशक ज्ञान नो पुंज छे एनु आदर करूं छू तेना ऊपर वलण ए नित्य पूजन छे। वाह, भव का भय का नाश करने वाला जो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, वो भगवान आत्मा के प्रति आदर भाव, कि ये आदर में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मैं हूं, ऐसा उसमें अपनत्व होवे, अहमपना होवे, जिसका नाम सम्यक दर्शन है, तो ये उसमें जो उसका अहो भाव कि ये परम सुख का देने वाला स्वभाव है, इसी का नाम नित्य पूजन है। सामायिक के प्रकरण में गुरुदेव श्री ने कहा था कि समता भाव का आय, समता का इनकम, लाभ होना, उसका नाम सामायिक है, पर अत्यारी तो सू काढ़ू छे, ये लुगड़ा पाथरो ने एम करो ने तेम करो, ऐसी क्रिया करो वैसी क्रिया करो, हम लोग अपन सबको जो है अपन हार्डवेयर से चिपके रहते हैं। हार्डवेयर माने बाह्य क्रिया और वाणी, क्या बोल रहे हैं उसका क्या अर्थ है, ये शायद अपन लोग भी उतना नहीं सोच पाते जितना सोचना चाहिए। इस संबंध में मुझे गुरुदेव श्री के जीवन की एक बात याद आती है कि वो कहते थे जब हम नाटक देखने जाते थे तो वो पहले पुस्तक खरीद लेते थे। वो उसका लॉजिक भी देते हैं कि हमको मान लो साउंड सिस्टम उतना अच्छा नहीं है और वो बोल गया जल्दी जल्दी तो हम लक्ष्य नहीं कर पाए, तो कम से कम हमको मालूम तो पड़ेगा तुम वहां चल क्या रहा है, क्या बोला जा रहा है। निजात पूजा में मैं यही विचार करता था कि भाषा जो विधान ने स्थापित किया है वो टेकचंद जी का लिखा हुआ है। टेकचंद जी के कई विधान हमारे हिंदी समाज में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये वाला भी नंदी जब पवैया जी के विधान आए उसके पहले वो ही चलते थे टेकचंद जी वाले, और उनकी भाषा समझ लीजिए 150-200 वर्ष पुरानी वो हिंदी लैंग्वेज ख्याल में आया ना। तो मैं सोचता था कि गुरुदेव तो किताब लेके समझते ही थे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है इसके कुछ शब्द भी चंद शब्द भी अपने खबर में ख्याल में आते कि नहीं आते, किसी को नहीं आते होंगे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोगों को जो माताएं बहने हैं जो सोनगढ़ की शैली से और उसकी भाषा से मान लो परिचित होंगे तो कदाचित उन्हें आता भी होगा, 10% 20% तो समझते ही होंगे, लेकिन कहीं कहीं बहुत मार्मिक बातें भी निकल जाती हैं। जैसे आज समुच्चय पूजन में आया कि पाप के त्याग रूपी फल लेकर के मैं आपके पास आया, पाप के त्याग के कारण मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है उस आनंद के फल के थाल भर के मैं आपके पास आया हूं। इनका गजब की बात है। टेकचंद जी के चिंतन में भी ऐसी आध्यात्मिक बातें थी इससे ये पता चला। खैर तो हार्डवेयर से चिपक जाते हैं माने उन्होंने कहा पूजा करना तो एक निश्चित काव्य निश्चित वो सब चीजें फिक्स और अपन उससे बंध जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये स्वभाव का आदर होना ये नित्य पूजन है, ये जो अपन करते हो तो व्यवहार की बात है। इसी तरह वाह कितना सुंदर एक प्रकरण आया 246 पेज को उन्होंने याद किया था, कर्म ने लक्ष्मा लीधा तेती हूं मारियो छे, मतलब संसार में रखड़ रहा हूं कर्म के कारण नहीं, कर्म ने लक्ष्मा लीधा तेथी संसार में समझ लो मैं दुखी हो रहा हूं। और अग समूह का अर्थ गुरुदेव ने क्या किया, आप बहुत से लोग जानते हो अघ माने पाप होता है, पर अकेला पाप नहीं होता है, अघ माने पुण्य पाप दोनों होता है। ये तो डॉक्टर साहब अपने व्याख्यान में बहुत कहते हैं, ये एक डिक्शनरी अजब टाइप की है, जैसे क मीन्स पृथ्वी, ख मीन्स आकाश, ग मीन्स वाणी, ख्याल में अब घ मीन्स आत्मा, ऐसा होता क ख ग घ ये बीजाक्षर हैं। तो क माने पृथ्वी, ख माने आकाश, ग माने वाणी गिरा है, और ख माने ए सॉरी घ, घ मतलब आत्मा। तो अघ इट आत्मा नहीं, तो जे आत्मा नथी एटले अनात्मा छे ते बधा अघ छे है। तो अघनाशक पूजाओं में अघ शब्द बहुत आता है, अघनाशक यानी पुण्य और पाप दोनों का नाश करने वाला, अघ समूह ना वशे पुण्य पाप ना ताबे थयोलो, उनके वश में हो गया तो कैसे हो गया, पुण्य पाप के वश में ये जीव कैसे हो जाता है। हाँ स्त्री के वश में होवे पुत्र के वश में होवे वो जैसा कहे वैसा मजबूरी में करना पड़े तो बात समझ में आती, पर पुण्य पाप के वश में कैसे हो जाता है। भैया पुण्य पाप को अपना स्वरूप मान लेना यही पुण्य पाप के वश में होना है। दुनिया में भी किसी के वश में होने के लिए पहले उससे एकत्व स्थापित करना पड़ता है। इस मकान को मैंने अपना माना तो अब मैं इसके वश में हो गया, फिर इसका कर्ता इसका भोक्ता इसका मेंटेन करना इसकी फिक्र करना इसका वो सब चलेगा। और जहां अपनापन टूट गया बेटी जब तक जब पराई हो गई ससुराल चली गई और वैसा अपनापन जैसा पहले बेटे में है वैसा तो नहीं रहता ना, तो फिर उसका अपनापन उसके ससुराल वाले करेंगे उसमें अपनापन, तो फिर उसकी फिक्र अपन क्यों करें। इस तरह से पुण्य पापना ताबे थे लो। वे एक शब्द पद्म परम्बल मुनिराज का भी आया। आज तो मैंने गुरुदेव श्री की शैली के बारे में थोड़ी बातें की, कल मैं आपको समय सार, प्रवचन सार और नियम सार इन तीनों ग्रंथों की विषय वस्तु की तुलनात्मक कंपेरेटिवली स्टडी उसके बारे में 15-20 मिनट अपन चर्चा करेंगे गुरुदेव के प्रवचन के साथ साथ। वो इसलिए मुझे याद आया कि इसके जो टीकाकार हैं पद्म परम्बल मुनिराज, पद्म परम्बल धारी देव, वास्तव में अमृतचंद्र आचार्य ने पता नहीं क्यों नियम सार ग्रंथ पर टीका नहीं लिखी, उन्होंने समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाए ये तीन शास्त्रों पर अमृतचंद्र आचार्य की टीका है और जैसेन आचार्य देव की भी इन्हीं तीन ग्रंथों पर टीका। अब ये तो जो लोग इतिहास के में रुचि रखते हैं हिस्ट्री में वो उस खोज करेंगे कि उनके सामने नियम सार आया नहीं या समय नहीं मिला या क्या हुआ, ये तो केवल ही जाने हैं। ये अपन तो मिस करते हैं, लेकिन पद्म परम्बल मुनिराज ने कोई कसर नहीं रखी। उन्होंने इतनी ऊंची साहित्यिक भाषा में श्रृंगार शैली में इतना सुंदर वर्णन किया है कि जैसे कि अमृतचंद्र ही आकर के वो टीका लिखी हो उन्होंने, ऐसी आनंददायक टीका। वो इसलिए मुझे याद आया कि एक शब्द आया था संस्कृति वधूना पति थयो। ये शब्द मैंने पढ़ा होगा पहले लेकिन स्मृति में से लोप हो गया। आज पहली बार डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने पहली बार सुना होगा। मुक्ति वधु की तो खूब बात आती है शास्त्रों में, मुक्ति वधु के वर समझ में आया, मुक्ति वधु यानी मोक्ष दशा, उसको अलंकारिक भाषा में मुक्ति वधु कहते हैं और उसका वर माने उसको वरण करने वाला आत्मा सिद्ध भगवान, वो मुक्ति वधु के स्वामी हैं। लेकिन ये संसार में चार गति में रखड़ रहे हैं मिथ्या तौर कसाय से, तो ये संसार अवस्था को भी वधु शब्द से बोलना और ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को मुक्ति वधु के संस्कृति वधु का वर बोलना। गुरुदेव ने की 2-3 मिनट इसकी व्याख्या। संस्कृति वधुना पति थयो, आकुल मति वालो थईने जीवे छे, काम जनित सुख माटे। अपनी सबकी ये दशा है, अपन सब भी वधु के वर हैं। कौन सी वधु के? संस्कृति यानी संसार, चार गति में जो जन्म मरण हो रहा है उसी का नाम संस्कृति है, संस्कृत में संस्कृति भी बोलते। तो उसका वधु का स्वामी ऐसा अज्ञानी जीव काम जनित सुख के लिए, देखो काम माने अकेला जो स्पर्शन इंद्रिय की बात नहीं है, पांचों इंद्रियों के विषयों को काम कहते हैं, काम भोग बंधन की कथा आता है ना। लेकिन वही जीव भव्यत्व वडे मुक्ति सुख ने पामे छे। अब गुरुदेव श्री ने भव्यत्व का ऐसा सुंदर अर्थ किया, पता नहीं मुझे तो ऐसा लगता है 2-4 हेल्पर अगर अच्छे मिल जावे भव्य तो इसका गुरुदेव की एक डिक्शनरी उनके प्रवचनों के आधार से रेफरेंस के साथ में कि कौन से प्रवचन में कौन से नंबर में कौन से ग्रंथ में किस शब्द का क्या खास अर्थ उन्होंने किया है, इसका एक समझ लो कलेक्शन करके थोड़ा बहुत तो सही 150 पेज का एक एक ग्रंथ का तो वो निकालना चाहिए। अब वो क्या है कि समय और वैसा वो सबकी प्रॉब्लम तो बहुत आती है, इसलिए अगर एक दो लोग भी मेरे साथ खड़े हो जावे सोमिल और बब्बे जैसे तो मैं उनकी हेल्प से उनसे ये काम करा सकता हूँ, मतलब वो अपन गाइड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। खैर वो लोग तो खुद भी कर सकते हैं। देखो क्या अर्थ किया मालूम, स्वभावनी योग्यता लायकात वडे भव्यत्व का अर्थ तो स्वभाव की योग्यता, स्वभाव में योग्यता पड़ी होती। पांच समवाय में जो स्वभाव नाम का समवाय है ना, पहला समवाय जानते, फाइव फैक्टर, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और होनहार और निमित्त, ये पांच समवाय हैं। अपने क्रमबद्ध का शिविर जब चलता है तो उसमें पांच समवाय की चर्चा करते हैं। तो उन्होंने स्वभाव में योग्यता पड़ी, उस योग्यता का आदर करके ये जीव मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। तो भव्यत्व का अर्थ स्वभाव की योग्यता किया और फिर एक कमेंट्स पास कर दिया, आनंद ने ज्ञान ए एनी लायकात छे। स्वभाव में कौन सी लायकात पड़ी हुई है, आत्मा के स्वभाव जैसे पुद्गल में कौन सी लायकात है कि स्पर्श रस गंध वर्ण वो उसकी लायकात, ऐसे स्वभाव में आत्मा में ज्ञान और आनंद की लायकात। इसी तरह जब 130 और 131 गाथा प्रारंभ हुई आज और उसमें परम सामायिक अधिकार की ही बात है, तो अभी मैं एक दो दिन में आप लोगों से डिस्कस करके एक और नई चीज आपको दूंगा कि हिंदी की समझ लो वीर छंद की गाथाओं का नियम सार का अपन पाठ कर सकते हैं 5-10 मिनट। उसकी तैयारी में मुझे टाइम लगेगा, वो टाइप तो हो चुका है, मैंने विदिशा शिविर में जो खाली समय मिला उसमें नियम सार ग्रंथ का पद्यानुवाद बनाया विधान के एंगल से, तो उसका भी स्वाद आप लोग चखें। तो इसमें 130-131 गाथा वस्तु स्वरूप तो त्रिकाली विजय स्वरूप छे। ये प्रकरण कहां से आया, यहां से आया कि नौ कषाय जो है, नौ कषाय है कि नौ कषाय, जब नौ बोले नाइन तो नाइन संख्या समझना, किस्मत से वो भी नौ है, हा सरति अरति शोक भय गिलानी स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ऐसे मतलब गिनती में भी नौ है। और जब नौ कषाय बोले तो ईषत, ईषत मतलब जिसका पावर डाउन रहता है, कषाय का पावर तीव्र है, क्रोध मान माया लोभ अनंतान बंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन क्रोध मान माया लोभ, ये सोलह कषाय कहलाती, इनका पावर तीव्र रहता है, है? क्या तीव्र रहता है कि ये अनंतान बंदी सम्यक्त नहीं होने देती, कर्म की बात नहीं है, भाव में जो अनंतान बंदी होती, अप्रत्याख्यानावरणी अणुव्रत नहीं होने देती, प्रत्याख्यानावरणी मुनिव्रत नहीं होने देती, और संजलन का उदय जब तक रहता है तीव्र तब तक जीव सातवें में नहीं जाता, छठवें में तीव्र उदय है, सातवें में मंद उदय है, तो मंद होते 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 फिर श्रेणी चढ़ता है। तो ये आत्मा के विकास को अवरुद्ध करने वाली हैं कषायें, रोकने वाली, समझ में आया, इसलिए ये कषाय है। और ये हास गुरुदेव ने आप देखिए एक एक शब्द की व्याख्या करके समझाया, हास से किसे कहते हैं, हंसी आती है, खुशी होती है, नवीनता लगती है तो हंसी आती है, उन्होंने कहा अरे जगत में क्या नवीन है, सब द्रव्य अपने गुण पर्याय में विराजमान रहते हैं अनादि अनंत, नया क्या है जो उसको देख के प्रसन्न होना, ऐसा कमेंट्स भी किया। इन मुझे एक विकल्प बहुत सताता है कि जैसे ये समझ लो स्त्री वेद पुरुष वेद है, इनको आचार्य ने नौ कषाय में लिया, आज के हिसाब से तो मिथ्यात के बाद सबसे पहला नंबर इनका रखना चाहिए था। समझ में आया ना, लेकिन ये जब अनंतानबंदी के साथ में होती हैं, हासरति अरति इत्यादि, तो इनमें भी अनंतानबंदी का पावर आ जाता है। ये आजकल एक सिस्टम चला है, जैसे आपके मोबाइल से अपने मोबाइल में मुझे कोई चीज लेना हो तो कोई वायर लगाने की या उसकी जरूरत नहीं है, क्या वो एक्सेंडर है कि सियरिट है कि क्या बोलते ब्लूटूथ है, कि वो आप अपना स्टार्ट कर दो, मैं अपना स्टार्ट कर दूं, आप सेंड कर दो, तो वायरलेस ही वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो वहां तो दूर बैठे रहते हैं तो भी ट्रांसफर हो जाता है, यहां तो अनंतानबंदी हास्य में चली जाती, रति में चली जाती, ये मिथ्या दृष्टि के हास्य रति अरति भी सब अनंतानबंदी वाला पावर रखते हैं भाई साहब। ये बात आप भावदीप का ग्रंथ में पढ़ सकते हैं, भावदीप का जो ग्रंथ है बहुत बढ़िया, उसमें ये सब भावों का बहुत सुंदर वर्णन है, उसमें ये बात बढ़िया आती है। तो है तो नो कषाय, नो माने जैसे नो कर्म, ये नो कर्म और द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन तीनों में क्या अंतर है? सुनना ध्यान से, मार्मिक बात। भाव कर्म तो जीव की विकारी अवस्था है, और निश्चय से अशुद्ध निश्चय से जीव भाव कर्म से ही दुखी होता है। यों भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। तो भाव कर्म तो जीव के राग द्वेष मोह परिणाम मिथ्यात कषाय, ये सब भाव कर्म है, राग आदि विकारी भाव, इसमें दर्शन मोह चारित्र मोह निमित्त बनते। द्रव्य कर्म जड़ है लेकिन वो भाव कर्म की उत्पत्ति में निमित्त बनते, घातिया कर्म, और अघातिया कर्म जो है वो बाह्य संयोगों के मिलने में निमित्त बनते। ख्याल में आया ना? देखो, बाह्य संयोग माने नो कर्म, ये बारिश हो रही ना, ये नो कर्म है। अब आपके साता का उदय होगा तो बारिश अच्छी लगेगी, असाता का उदय होगा तो बारिश में परेशान हो जाऊंगा। तो बारिश अच्छी है कि बुरी है, वो नो कर्म है। नो कर्म डायरेक्ट दुख नहीं देते, निमित्त भी डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते। डायरेक्ट निमित्त जो है उपादान तो भाव कर्म जीव का दुखी होने में, और निमित्त द्रव्य कर्म का होता है, और नो कर्म तो निमित्त का भी निमित्त है। समझ में आया? आप यूं समझ लीजिए, जैसे पुलिस वाला किसी चोर की पिटाई करे तो हंटर अंग्रेजों के जमाने में चलते थे ना, अभी तो लात घूंसे से मारते हैं, तो हंटर मारे तो पुलिस वाला का ज्यादा मतलब वो किसको कहेगा कि मुझे छोड़ दो, हंटर से कहेगा कि पुलिस वाले से कहेगा? मारने का काम तो पुलिस वाला कर रहा है लेकिन साधन उसका हंटर है। ऐसे सुख दुख में निमित्त जो है वो तो जीव का द्रव्य कर्म है, लेकिन द्रव्य कर्म भी डायरेक्ट अपन को कहां दिखता है? वो भी नो कर्म के माध्यम से दिखता है। शरीर में रोग आ गया, पैसा नहीं है, अपमान हो गया, किसी ने अपमान, इत्यादि इत्यादि दुनिया भर की बात है। खैर, तो ये काम जैसे सुख माटे जीव, अभी तो इसमें थे अपन, भव्यत्व बड़े मुक्ति सुख ने पामे छे। फिर आया स्थायी सामायिक केवली शासन, और उसके बाद में ये अपना समतानो आए स्थायी सामायिक कहूं केवली शासन है। तो जब उसमें आया नो कर्म पर विजय प्राप्त करना, वो सामायिक, उसके पहले समझ लो कर्म के ऊपर राग द्वेष के ऊपर ये सब बोल आ चुके पिछली गाथा में। तो नो कर्म पर विजय प्राप्त करना ये सामायिक का स्वरूप है। तो गुरुदेव ने फरमाया कि आत्मा का स्वभाव ही विजय स्वरूप है। क्या क्या है स्वभाव विजय स्वरूप है का क्या अर्थ है? इतना मजबूत और सुरक्षित किला है कि ये चाहे द्रव्य कर्म हो, चाहे नो कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, ये स्वभाव को छू भी नहीं सकते। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त है ना, पांच बोल चौदहवीं पंद्रहवीं गाथा में। तो उसमें समझ लो असंयुक्त वाला बोल कि रागादि भाव से आत्मा असंयुक्त है। ख्याल में आए ना? ये उसको छू भी नहीं सकते, द्रव्य कर्म आत्मा को छू भी नहीं सकते। अरे गजब हो गया। एक बाजू कहते हैं कि एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं बैठी हुई हैं, और एक बाजू कहते हैं कि छू भी नहीं सकते हैं। भैया, एक भाषा संयोग की है और एक भाषा स्वभाव की है, ये समझने की बात है। जगत में संयोग प्रधान भाषा चलती है और मोक्ष मार्ग में स्वभाव प्रधान अनुभूति चलती। इसलिए तो गुरुदेव ने स्वभाव दृष्टि से ही हर चीज का वर्णन किया। पुद्गल का भी वर्णन करते तो स्वभाव दृष्टि से। उन्होंने, आपको याद होगा, जब इसकी चर्चा आई दुगुंछा, दुगुंछा माने जुगुप्सा, ग्लानी, ये भी नो कषाय का एक प्रकार है। वो तो मोह के उदय से निमित्त है, मोह की सेना है ये सब। तो कितने उदाहरण दिए, मलमूत्र होवे, सड़ेला उंदर होवे, हैं, सड़ेला भूंड होवे, सड़ेला कुतरा होवे, कोई चीज सड़क पर गंदी पड़ी हो या कोई कुत्ता मरा। अभी हम आए तो कल दो प्राणी त्रेन छमे बड़े पंचेंद्री सड़क पे, अरे राम राम राम, उसको देखने की इच्छा नहीं होती। गुरुदेव कहते वो उसके प्रति जो अदेख सका भाव है वो पाप भाव है। जो कषाय जो है वो पाप के बंध का कारण है। अपने को पता ही नहीं चलता कि जो अपन हंसी मजाक करते हैं, गुरुदेव ने दांत काढ़े थे, हैं हंसी मजाक करते हैं आपस में, हंसते हैं, वो बड़े वो आते हैं ना, वो तारक मेहता जैसे प्रोग्राम समझ में आया है ना, तो हाँ आप हमारे साथ बने रहिए, आपको तो हंसी के ठाके मिलेंगे, जेठालाल चाहे कितनी परेशान होवे लेकिन आपके हिस्से तो हंसी आने वाली है। गुरुदेव की लैंग्वेज में बोले तो पाप आने वाला है। समझ में आया, सोचते ही नहीं, हंसने में भी पाप लगता, इसमें काय का पाप है। अरे भैया, इंसान झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये मुख्य पांच पाप कहे हैं। उसमें प्रसाद सिद्ध उपाय में आपके यहाँ रात को चलता है, मुझे बताएं, रात्रि को प्रसाद सिद्ध उपाय चलता है गुरुदेव की सीडी में है? तो उसमें बताया कि असली पाप तो एक हिंसा ही है, झूठ चोरी कुशील परिग्रह तो शिष्यों को समझाने के लिए कहे गए। और हिंसा किसे कहते हैं? आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और उसकी उत्पत्ति नहीं होना ये अहिंसा है। इति जिनागमस्य संक्षेप, ये जिनागम का सार है। अभी बोलो तो हास्य राग से ही होता है ना, ख्याल में आया, तो हिंसा हुआ, पाप हुआ कोई भी प्रकार का। अरे पुण्य भाव भी हिंसा है, इसलिए तो योग सार जैसे जो समझ लो गंभीर आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उसका वो दोहा गुरुदेव बहुत याद करते हैं कि पाप तत्व को तो सब लोग पाप कहते हैं, लेकिन ऐसे बिरले ज्ञानी होते हैं जो पुण्य को भी पाप कहते हैं। अब सोचो आप, पुण्य भी पाप कैसे हो गया, जब नाम दोनों के अलग अलग हैं, प्रकृति दोनों की अलग अलग है, तो पुण्य को भी पाप क्यों कहा गया, क्या लॉजिक है उसके पीछे? पुण्य राग है कि वितरागता है? राग है, और राग माने हिंसा है, तो हिंसा की एंट्री कौन से अकाउंट में होती है? पाप के अकाउंट में। पांच पांच पापों में पहला नंबर किसका है? हिंसा का। तो राग आदि भावों की उत्पत्ति होना, वो हम तो हर साल बच्चों को एक अहिंसा वाला निबंध, यहां भी आप लोग बहुत पढ़ते होंगे, मैंने वितराग विज्ञान पाठमाला के दूसरे भाग में एक अहिंसा नाम का निबंध है, तो उसमें ये प्रसाद सिद्ध उपाय के आधार से ही ये सब सिद्ध किया है कि अशुभ राग तो हिंसा है ही, लेकिन शुभ राग भी हिंसा ही है, क्योंकि उसमें भी राग भाव है। इसमें एक बहुत मार्मिक प्रकरण सहज आ गया। किसी श्रोता ने गुरुदेव को पूछा, देखो पाप मां गिलानी थाए छे, गिलानी का प्रकरण चल रहा था कि पाप में गिलानी होती है तो भी पाप है, पाप भाव में गिलानी होना, बात समझ में आई? कोई सड़ेला उंदर पड़ा होवे उसमें गिलानी होवा, मलमूत्र में गिलानी होना तो पाप लगता है, बराबर है, लेकिन अपने अंदर पाप भाव उत्पन्न हुआ, बिजनेस में झूठ बोलते हैं, समझ में आया ना, बोलना पड़ता है, लोक व्यवहार में झूठ बोलना पड़ता है, पक्का पता है कि नहीं आएंगे शादी में, हाँ हाँ जरूर आएंगे, कोशिश करेंगे। समझ में आया ना, ऐसा व्यवहार निभाने के लिए बोलना पड़ता है कि कौन से पाप से अपन अपने ग्रस्त जीवन में बच पाते, पांचों में से अगर बच गए होते तो मुनि होने की जरूरत क्या थी? मुनि दशा ही इसलिए होती है कि जो समस्त पापों के त्याग स्वरूप, ध्यान रखना, परिग्रह होगा तो आरंभ होगा, कपड़े होंगे तो कपड़े धुलेंगे भी, धुलेंगे तो हिंसा होगी, समझ में आया? परिग्रह आरंभ का मूल है, आरंभ पाप का मूल है, और मिथ्यात परिग्रह का मूल है। मिथ्यात से परिग्रह, परिग्रह से आरंभ, आरंभ माने परिग्रह को मेंटेन करना, और फिर उससे आरंभ से पाप, हिंसा इत्यादि। तो जो श्रोता ने पूछा, बहुत बुद्धिमानी का प्रश्न था वो, कि अपने को जो पाप भाव होते हैं, अपन जानते हैं कि ये पाप, अखबार पढ़ने का भाव, चाय नाश्ता, खाना पीना, उठना बैठना, किसमें पाप नहीं है? गाड़ी में चलना उसमें पाप नहीं, अपन को महसूस नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य पाप भाव पाप सबकी जड़ है ये ग्रस्त आश्रम है। तो उसने कहा हमको पाप भावों के प्रति ग्लानी होती, अरे ऐसा पाप भाव नहीं आना चाहिए, ऐसा भाव मुझे आ गया ये बराबर नहीं है। ये समझ लो आज के प्रवचन का माखन है ये वाला टॉपिक, आज के प्रवचन का आत्मा सार ये टॉपिक है। तो गुरुदेव ने क्या फरमाया, पाप में ग्लानी होती है वो भी राग है। पाप ऊपर लक्ष्य, क्या बोला, पाप ऊपर लक्ष्य ये दुख छे, गजब हो गया। यानी पाप को पाप रूप जाने लेकिन अपना उपयोग उस तरफ जाता है कि मेरे को ऐसा परिणाम हुआ तो उसमें भी जीव दुखी होता है, उसमें भी पाप है। पाप में ग्लानी करना ये भी पाप है, गजब बात है, कहां मिलेगी ये बात, बताए मर्म, अरे कौन तुम्हारे बिन, फल पढ़ते हुए ना आप लोग ये सब, तुम्हारे बिन वैदेही नाथ, ये मर्म कौन बताए कि पाप के ऊपर लक्ष्य गया, अरे मेरे को ऐसा पाप हुआ ये नहीं होना चाहिए। और अपन उसमें आलोचना पाठ पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, वो प्रतिक्रमण में ये सब बोलते हैं कि मैंने एक इंद्रिय की हिंसा की हो, दो इंद्रिय की हिंसा की हो, सबके प्रति क्षमा भाव हो, तो पाप को याद करके ही तो क्षमा मांगते हैं ना, तो वो राग भी पाप भाव है वास्तव में देखा जाए तो, गजब हो गया, ऐसा कौन बोल सकता है, बोलो है। फिर उनने एक बहुत मार्मिक बात की, वीर माँ एटलो बंदोबस्त करे, ये कहां की लैंग्वेज है, वीर माँ ज्ञान माँ ध्यान, वीर में मतलब उत्साह से, पौरुष जागृत करके, फोर्स पूर्वक, समझ में आया, वीर माँ ज्ञान माँ ध्यान माँ एवं बंदोबस्त करे, इसलिए ऐसी व्यवस्था बना दे रहे कि आ करवा लायक छे, ऐसा निर्णय तो हो ही जाना चाहिए। परिणमन में होवे उसमें तो टाइम लगे भाई, एक क्रम बताया उन्होंने, पहले सामले पची विचार करे पची निर्णय करे, सुने विचारे निर्णय करे, ख्याल में आया ना, उसी के अंतर्गत ये प्रोसी। देखो परंपरागत सुनना अलग चीज है और गर्जी होकर के सुनना अलग चीज है, हमारे रूटीन में है, जैसे आजकल गुरुदेव का, अभी तो यहां अपन जल्दी आ जाते, नहीं तो 7 बजे से समय लो, क्या बढ़िया सोनगढ़ का दर्शन होता है वो, उसमें अरंत चैनल में सोनगढ़ का पूरा दर्शन करा देंगे, हूं परमात्मा छू ऐसा पूरा मैसेज सुनने डेली मिलेगा, वहीं से मंगलाचरण होगा, फिर योगसार का प्रवचन मिलेगा। तो मैंने ऐसे अपने रिश्तेदारों वगैरह को भी कई, अब जो हम अभी थे जबलपुर में, तो उन्होंने बताया हम सुनने लगे, डेली सुनने लगे, अभी इससे ये लाभ हुआ कि बहुत से लोगों का रूटीन में वो चीज आ गई। तो एक अपेक्षा देखा जाए तो काने पड़े ए पण भाग्यशाली छे, तो काने तो पड़े कम से कम, लेकिन जो चीज मात्र रूटीन में आ जाती है तो फिर हम उसका लाभ नहीं ले पाते, तो वो हमें आदत बन जाती, ख्याल में आया ना। तो गर्जी होकर के सुनना अलग बात है, तो उनका सुने विचारे सामने पची निर्णय करे, ऐसा। फिर वो बात आई थी जो मैंने पहले बताई, विकृत अवस्था हो एमा पण परनी हयाती नथी, एवं एने मां जोर छे माने एने, ये एक बड़ी मार्मिक बात थी कि आत्मा में ज्ञान है, आनंद है, स्वभाव है, अनंत शक्ति है, घणो जोर अनंत शक्ति वालो छे आत्मा, कौन है माने एने, इस पे वो हमेशा जोर देते, और ये वहां से लिंक बिठाते हैं जो 6वीं गाथा की टीका में आता है, हैं? पर से भिन्नत्वेन उपास्य मानत्वात् शुद्ध इति अवलप्यते, भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहने में आता, भिन्न है इसलिए शुद्ध है, वो अलग बात है, वो त्रिकाली परम शुद्ध ने की बात, खरे खर तो भिन्न है ऐसी उपासना यानी श्रद्धा ज्ञान चारित्र, उसमें भिन्नता भाषित हो गए श्रद्धा ज्ञान चारित्र में, तो उसका नाम शुद्ध है। इसी टोन में गुरुदेव ने फरमाया माने एने, फिर वो कारण न स्वीकार, ये तो बहुत बोलते हैं। उनसे पूछा कारण परमात्मा, कारण परमात्मा आप बोलते कार्य क्यों नहीं है? तो कारण को स्वीकार करे तो कार्य प्रकट होवे ना। फिर वो ददाति इति देव की बात आई, तो अपन ने देखा कि 58 मिनट के प्रवचन में गुरुदेव ने कितनी गहरी गहरी बातें, जिसपे अपन दो तीन बार दोबारा चर्चा न करें। सोनगढ़ में ये पद्धति जब हम समझो हर वर्ष जाया करते थे, गुरुदेव की हाजिरी थी, तो गुरुदेव के प्रवचन के बाद दो चार ग्रुप अलग, कोई वो नमल भाई के पास में, तो कोई इनके पास में, कोई उनके पास में, हमारे पंडित धन्ना लाल जी थे ग्वालियर वाले उनके पास में, दोपहर में रामजी भाई के पास में, और शाम को खेमचंद भाई के साथ में घूमने जाते थे, तब फिर बाद में बैठते थे। तो एक चर्चा आज गुरुदेव के प्रवचन में क्या आया, बोलो आप। वो इतना दिन भर याद रखना, उसी का घूंटन करना, मनन करना, तो ये एक अनुपम समझ लीजिए लाभ था, अभी भी है। अपन सब इसका जितना ज्यादा हो सके उतना लाभ लेवे। पर्व चल रहे हैं, उनकी चर्चा यथा समय करेंगे, अभी समय हो गया, इसलिए मैं यहीं विराम लेता हूं।